हिरणा कश माया का युद्ध करने लगा, लेकिन भगवान के सामने कुछ कर नहीं पाया। फिर एक बार भगवान ने ऐसा मारा कि उसकी गदा गिर गई, हिरणाकश की गदा गिरी। भगवान ने कहा उठाओ गदा फिर लड़े। बोला भगवान की बात मानना, मैं असुर हूं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। गदा नहीं उठाई, त्रिशूल उठा के लड़ाई शुरू की। असुर का मतलब भगवान का बात नहीं मानेंगे, चाहे अच्छी भी बोले तो भी नहीं मानेंगे, उनका काम ही है। और यहां एक बात और ध्यान दे के सुन लो, ये असुर होते हैं ना केवल भगवान से ही द्वेष करते हैं, एनिमिटी रखते हैं, लेकिन देवताओं के बड़े भक्त होते हैं। ये हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके आशीर्वाद लेके आएगा, रावण ब्रह्मा से भी वरदान लेगा, शंकर का भी बड़ा भक्त होगा, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु के अपने आप को द्वेषी कहते हैं। इसलिए असुर देवताओं के भक्त होते हैं लेकिन भगवान से द्वेष करते हैं। अब बहुत घोर युद्ध होने लगा, शाम का वक्त होने लगा, सायंकाल। देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान वाराहदेव जल्दी करो, शाम होते ही असुर की शक्ति डबल हो जाएगी, फिर ये युद्ध में आपको ज्यादा टाइम। भगवान तो खेल रहे थे। अब जब उसने कहा तो वाराहदेव ने एक मुक्का दे मारा हिरण्यकश्यप के गले के ऊपर, जैसे गाल के ऊपर मुक्का लगा, हिरण्यकश्यप नीचे गिरा और गिरते ही उसका प्राण निकल गए और सब ने वाराहदेव की जय जयकार की। पृथ्वी अपने स्थान पे आई, सब देवताओं ने वाराहदेव की पूजा की। यहाँ पहले 19 अध्याय पूरे होते हैं और इसके बाद पृथ्वी के ऊपर सृष्टि शुरू होती है। तो सृष्टि कैसे शुरू हुई, ये भगवान के दूसरे अवतार का अब वर्णन आएगा। ये भगवान का दूसरा अवतार है। जब सृष्टि बनी है तो उसके ऊपर रहना कैसे चाहिए, उसके लिए नियम कैसे होने चाहिए, तो ये ज्ञान का शिक्षा देने के लिए दूसरा भगवान का अवतार कपिल देव भगवान है। ये भगवान कपिल देव का अवतार होने वाला है, जो जो इस पृथ्वी के ऊपर मनु के, आपको आपको बताया, मनु और शत्रुपा, ये दो पहले स्त्री और पुरुष इस धरती के ऊपर पैदा हुए। ठीक है, ये समझ में आया। पहले स्त्री इस धरती के ऊपर हुई, उसका नाम क्या है, शत्रुपा, और पहला पुरुष मनु। इनको तीन बेटियां हुई, दो बेटे हुए। दो बेटों के नाम है उतानपाद और प्रियव्रत, और तीन बेटियों के नाम है देवहूति, आकुति, प्रसूति। अब बात यहां शुरू होती है, भगवान सॉरी ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए कर्दम मुनि तपस्या कर रहे थे। ऐसी घोर तपस्या कर रहे थे, कहां कर रहे थे, एक स्थान है सरस्वती के तट के ऊपर, और वहां तपस्या कर रहे थे। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके सामने खड़े हो गए, तपस्या से इतने प्रसन्न हुए भगवान विष्णु, उसकी तपस्या देख के आंखों से दो आंसू गिरे भगवान के, और वहां एक सरोवर बन गया। उस सरोवर का नाम है बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर वहां बन गया। कर्दम को भगवान ने कहा, मेरे आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, और फिर कर्दम की ओर देख के कहा, तुम्हारी इच्छा गृहस्थ धर्म में जाने की है कर्दम, आज से 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद स्वयंभू मनु अपनी पुत्री को लेकर तुम्हारे पास आएगा, और मैं तुमसे प्रसन्न हूं। और कर्दम को भगवान ने कहा, मैं तेरे घर पुत्र के रूप में प्रकट हूंगा। कर्दम तपस्या समाप्त करके अपनी कुटिया में आकर बैठे, स्वयंभू मनु अपनी बेटी देवहूति को लेकर रथ के ऊपर चढ़े, शत्रुपा अपनी पत्नी को लिया, मां और माता और पिता दो और एक बेटी और कुछ घर के लिए देने वाला सामान ये लेकर सीधे आए कर्दम मुनि ब्राह्मण की कुटिया पे जो घास की थी। और स्वयंभू मनु राजा है पूरी पृथ्वी का, मनवंतर का राजा है, वो एम्परर है, और ये एक ब्राह्मण है कुटिया के अंदर रहता है। उसके पास आया, उसको आता हुआ देखकर मनु ने कर्दम को प्रणाम किया, क्योंकि कर्दम एक तो ब्राह्मण है और दूसरा बड़ा भाई है, ब्रह्मा का पुत्र है। और फिर कर्दम ने मनु से समाचार पूछा, आपका शासन ठीक चल रहा है, ब्राह्मण आपके राज में गौ सब सुखी है। कर्दम ने मनु से समाचार पूरा, फिर मनु ने कहा, ये मेरी पुत्री बहुत सुंदर भी है और आपके योग्य भी है, मैं इसका हाथ आपको विवाह करके देने के लिए आया हूं। कर्दम जी ने कहा भगवान ने मुझे पहले ही इसका संकेत दिया था। और उधर मनु ने अपनी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार, मतलब पाणी ग्रहण समझते हैं, विवाह को पाणी ग्रहण कहते हैं, पाणी कहते हैं हाथ को, लड़की का हाथ, हाँ दुल्हन का हाथ दुल्हा के हाथ में देते हैं, इसको पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। या मॉरिशस में शादी होती है तब ऐसे होता है कि नहीं होता है, लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देते हैं ना, पंडित जी बांधता है ना ऊपर, हाँ तो शादी के लिए जो शब्द है वो है पाणी ग्रहण संस्कार, हाथ देना। इसका मतलब जो हाथ पकड़ता है वो सारी जिंदगी उसका जिम्मेवारी उठाता है। तो मनु ने अपनी बेटी का हाथ कर्दम मुनि के हाथ में दिया। मैं कभी ये कथा जब करने की बात आती तब कहते हूं, मनु राजा होते हुए भी कोई कार्ड भी नहीं छपाया था शादी का, कुछ लोग भी इकट्ठे नहीं किए थे ज्यादा, बेकार का पैसा खर्च नहीं किया था शादी के नाम में, अपनी बेटी को जो देना था उतना ही कन्या को देके चला गया था दान। यहां तो कन्या को बहुत कम मिलता है और बाहर वाले बहुत ज्यादा खा जाते हैं, बेकार में पैसे का खर्चा करने का कोई फायदा नहीं है, अपनी लड़की को देना चाहिए, दुनिया को खिलाने से क्या होगा, दुनिया को बहुत अच्छी शादी की, अच्छी शादी की, घर तो लूट गया मेरा, लड़की को तो कुछ भी नहीं दिया, चाहे 25-50 कपड़े देते हैं उसका फैशन चला जाता है, किसी काम में नहीं आते। इसलिए कुछ मनु से सीखना चाहिए, वो सोना आभूषण जो बहुत काम की चीजें जो बच्ची को काम आएंगी वो बच्ची को देनी चाहिए, दिखावा करके बड़े पंडाल वंडाल लगाने की जरूरत नहीं है, मनु ऐसी शिक्षा दे रहा है। और यहां देवहूति शादी तो करके आई, कर्दम तपस्या में लगया और देवहूति उसकी सेवा में लग गई, कोई भोग नहीं, शांति से अपने पति की सेवा में, दुबली पतली भी हो गई, राजा की बेटी थी, ब्राह्मण के घर में तो कंदमूल खाने को मिलता था, कोई ज्यादा वैभव नहीं था, लेकिन बहुत प्रेम से सेवा की। एक दिन कर्दम ने आंख उठा के देवहूति को देखा, आपकी क्या इच्छा है बोलो मनुपुत्री। तो देवहूति ने सर नीचे किया हुआ, पांव के अंगूठे से जमीन को खोदती हुई कहा, मेरे पिताजी को आपने कहा था कि संतान उत्पन्न होने के बाद आप आश्रम छोड़ के संन्यास ले लेंगे। हां मुझे याद आया, भगवान ने भी मुझे कहा था उनको प्रकट होना है। तो फिर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं। बहुत तपस्या के बाद कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से एक बहुत सुंदर महल बनाया। कैसा महल? आकाश में उड़ सकता है, पानी के ऊपर तैर सकता है, और इतना सुंदर महल तैयार हुआ। लेकिन देखा देवती कोई प्रसन्नता नहीं है। कर्दम समझ गया कि कपड़े भी मैले हैं, दुबली पतली है, अब महल इतना बड़ा बना है, इसमें चढ़ने से पहले कहा आप जल्दी जाओ स्नान करो बिंदु सरोवर में। देवहूति बिंदु सरोवर में नहाने के लिए गई, उधर विद्याधरों की कन्याएं हजारों की संख्या में आई, देवहूति को बहुत सुंदर सुगंधित तेल से मालिश भी किया, देवहूति को सुंदर श्रृंगार कराया। देवहूति जब बाहर निकली, विद्याधर कन्याएं जो उसकी सेवा में, सुंदर मनु की पुत्री आज कर्दम के पास बैठी, और दोनों उस विमान के अंदर चढ़ के जो उड़ सकता था, नंदन कानन स्वर्ग में देखने गए, हिमालय कैलाश सब जगहों पे घूम फिर के वापस जब आए, तब कर्दम ने अपने आप को 9 में विभाजित किया, डिवाइड किया, और देवहूति को 9 कन्याएं हुई। और ये 9 कन्याएं भी बहुत महान, और इन 9 कन्याओं का विवाह सप्त ऋषियों से हुआ। हम सब जो इस दुनिया में इंसान है इन ऋषियों से पैदा हुए हैं, और इन मनु की कन्याएं से पैदा हुए हैं, हमारे गोत्र सब यहां से शुरू होते हैं। अब कर्दम कहता है मैं जाता हूं संन्यास लेकर। देवहूति ने कहा वो तो ठीक है आप जा सकते हैं, आपका धर्म है, लेकिन ये कन्याएं कल शादी होंगी अपने, ये लड़कियां तो शादी होगी अपने घर चली जाएंगी, मेरा कौन देखभाल करेगा। मनु स्मृति में मनु जी ने लिखा है कि कन्या स्त्री की 3 अवस्थाएं होती है। पहले कन्या माता पिता की देखभाल में रहती है, फिर स्त्री होती है पति उसका देखभाल करता है, और पति किसी कारण से संन्यास लेता है धर्म पालन करने के लिए, अथवा अगर नहीं रहता है तो तो बड़ा बेटा उसकी देखभाल कर रहा है, हर समय स्त्री को ठीक तरह से कोई उसका संरक्षण करने वाला, संभालने वाला होना चाहिए। ये धर्म का पहला मर्यादा है। आज कर्दम कहता है मुझे भी याद आता है, और तब कर्दम के हृदय में भगवान प्रकट हुए, और कर्दम के हृदय से भगवान देवहूति के हृदय में प्रकट हुए, और समय आने के ऊपर कपिल देव भगवान का प्रकट्य हुआ। वो गोल्डन बाल थे बड़े सुंदर, कपिल देव का प्रकट्य हुआ। कर्दम मुनि ने अपने बेटे को प्रणाम किया और कहा कि बेटा, भगवान घर में अवतार लेकर आया, लेकिन कर्दम मुनि कहते मैं अब वन में जाऊंगा, तपस्या करूंगा, अकेला घूमूंगा। बेटे ने कहा आपका ध्यान करूंगा। बेटा देखा कि पिताजी थोड़े से असंतुष्ट है, तब कहा आप चिंता मत कीजिए, जो ज्ञान आपको मैंने दिया है ये शिक्षा मैं मेरी मां को दूंगा। ये पहली स्त्री है जिसको भगवान बेटा है, देवहूति माता है, लेकिन अपनी माता को भगवान ने सांख्य दर्शन का शिक्षा दिया। इसलिए जिस स्थान के ऊपर ये शिक्षा दी है, बिंदु सरोवर आज भी गुजरात में है, उसको लिखा है मात्र गया, जहां माता का उद्धार होता है। माता का भगवान कपिल देव ने उद्धार किया। एक दिन बैठी हुई मां देवहूति कहती है कपिल देव को, इतना बड़ा कर्दम मेरा पति जिसने भगवान का दर्शन किया, मैं उसके संग में रहकर भी भगवान प्राप्ति की शिक्षा न ले पाई और संसार के भोग में फंस गई। बेटा अब मैं एक तो स्त्री हूं और ज्यादा समझदार भी नहीं हूं, आप मुझे भगवान की प्राप्ति का साधन बताओ। कपिल देव बहुत प्रसन्न हुए अपनी मां को शिक्षा देने के लिए। पहले योग अभ्यास कैसे करते हैं उसकी शिक्षा दी। वो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, इतना आपको समझना चाहिए, उसमें ऐसे लिखा है कि जब भगवान का दर्शन करना आना चाहिए तब भगवान के चरणों से दर्शन शुरू करते हैं, अभ्यास चरणों से दर्शन, फिर भगवान का पीतांबर धोती पहनी हुई देखते हैं, फिर कमर के ऊपर कुछ बंधा हुआ है वो देखते हैं, उसके बाद भगवान की नाभि का ध्यान करते हैं जिससे कमल निकलता है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, फिर भगवान की वैजयंती माला देखते हैं, फिर भगवान के यहाँ कौत्सव मणि होती है, श्री वत्स का चिन्ह होता है, और गले में भगवान का मालाएं देखते हैं, फिर भगवान की भुजाएं देखते हैं, फिर भगवान के मुखमंडल को देखते हैं। तो ऐसे ध्यान की पद्धति भगवान के चरणों से देखने की है, और फिर शुद्ध भक्ति का, भक्तों के संग में, साधुओं के संग में भगवान की शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। ऐसी शिक्षा कर्दम मुनि ने अपनी मां को दिया। मां ने पूछा संसार में आदमी बंद कैसे जाता है, तब गर्भ गीता सुनाई सुखदेव गोस्वामी ने, कर्दम मुनि ने कहा 2 महीने तक तो केवल स्त्री और पुरुष के 2 कीटाणु मिलके रहते हैं, 2 महीने तक तो इतना मांस का लोथड़ा होता है, फिर उसके चमड़ी बनती है, फिर हाथ पांव बनते हैं, 5 महीने तक उसको जो मां खाती है उसका पता लगता है, खारा होता है, खट्टा होता है, सौर तो उसको दुख होता है, फिर वो अंदर भगवान को प्रार्थना करता है, जैसे प्लास्टिक बैग में बंद होता है ऐसे बंद होता है, उस वक्त उसको 100 जन्म अपने याद आते हैं, भगवान को कहता है मेरे को यहां से निकालो, और जैसे मुझे निकालो मैं आपका याद करके मैं आपके पास आता हूं, आना चाहता हूं। जैसे दुनिया में आता है कोई स्त्री आके बोलती है मेरा पोता है, कोई कहती है मेरा बेटा है, कोई कहती है मेरा ये है, वो ऐसा उसको मुंह में डाल देती है, वो किसी को नहीं जानता है, वो किसी को भी नहीं जानता। जानता है बच्चा कोई पैदा होता है किसी को जानता है क्या? हम कहते हैं ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, ऐसे करते करते वो उसको सब संसार भूल जाता है। फिर कर्दम मुनि कहते हैं, और फिर कपिल देव कहते हैं, फिर जब वो न जाना चाहता है जब जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं, और स्कूल भी जबरदस्ती भेजते हैं तब जाता है, उसकी च्वाइस नहीं होती है, लेकिन जब 18-20 साल का होता है तब समझता है कि दुनिया मैं चला रहा हूं, किसी की सुनने को तैयार नहीं है, और फिर इस दुनिया में भोग के लिए इधर कमाएगा, उधर को हाथ मारेगा, यहां चोरी करेगा, वहां बदमाशी करेगा, और फिर जिनको अपना मानता है वो उसमें से कोई भी साथ देने वाला नहीं है। अंत समय किसी के साथ कोई गया है क्या आज तक? किसी के साथ मरते हुए कोई गया है आज तक? नहीं जा सकता है ना, रिश्तेदार भी नहीं जा सकता है, नातेदार भी नहीं जा सकता है। गाड़ियां गैरेज में खड़ी रह जाती हैं, पैसा तिजोरी में लॉकर में रह जाता है, परिवार वाले पीछे रह जाते हैं, उसका शरीर भी साथ नहीं जाता, वो भी हमारे सामने यहाँ अग्नि के ऊपर भस्म होके मिट्टी भर मुट्ठी भर राख होती है उसको गंगा में जाके डाल देते, वो भी घर में कोई नहीं था। मरने के बाद उनकी छोटी हड्डियां चुन के आते हैं यहाँ आपके यहाँ शमशान से लाते हैं घर में। हाँ हाँ, जब जब अग्नि संस्कार होता है ना, दूसरे दिन फिर पानी ले जाते हैं उसके ऊपर डाल के, उसके अंदर छोटी छोटी हड्डियां बचती हैं, उनको अस्थियां बोलते हैं, वो लाते हैं और उसको गंगा में ले जाते हैं डब्बे में डालकर। भारत में ऐसे है, यहां लाते हैं लेकिन उसको घर में नहीं लाते हैं, मालूम है उसको घर में नहीं लाते हैं, उसको मंदिर में रख के आते हैं गंगा में जाने से पहले। घर में क्यों नहीं लाते? पता नहीं भूत हो जाएगा हमारे। अरे जिसका घर है, जिसने घर बनाया, घर का मालिक है, उसकी हड्डी घर में नहीं आएगी, लेकिन मुर्गी की और बकरे की हड्डी फ्रिज में पड़ी होगी। मुर्गे और बकरे को फ्रिज में रखते हैं हड्डियां, उसकी बाप की हड्डी घर में नहीं लाते है ना दुनिया वाले बदमाश। फिर हम कहते नहीं नहीं है हमारे अपने। अरे अपना कोई नहीं है, जो घर बनाता है बुढ़ापे में उसको बाहर बिठा देते हैं, घर के अंदर नहीं जा सकता। ऐसे बहुत से आपने देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं देखे? हाँ, जो घर का मालिक जिसने बनाया है वो बाहर पड़ा होता है खटिया पे, उसको अंदर नहीं आने देते। एक बार एक बूढ़ा बाबा था, उसकी बेटे को उसकी पत्नी बोलती है तेरा बाप सारी रात खांसता है, मेरी नींद खराब करता है, और कुछ खाने को देती है, कभी बोलता है नमक ज्यादा है, कभी बोलता है मिर्ची ज्यादा है, इसके मैं तंग हो गई हूं, इसको ले जाके किसी बूढ़े आश्रम में छोड़ के आओ, नहीं तो हरिद्वार छोड़ के आओ, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। अब तो बेचारा डर गया, पिताजी को बोला चलो आपको हरिद्वार का दर्शन करा के आता हूं तीर्थ यात्रा। पिताजी ने बोला बेटा ले चलो तीर्थ यात्रा करना, तुम्हारा पिता का बेटे का धर्म है तीर्थ कराना। जब आओ जंगल में पहुंचा तब बोला पिताजी आप इस पेड़ के नीचे बैठो, मैं आपके लिए जलपान लेके आता हूं कुछ खाने पीने का। लड़का मुड़ा, पिताजी जोर से हंसे, मुड़ के देखा, फिर रोने शुरू किया बाप ने। लड़का बोलता है ये क्या हो गया पिताजी, आप हंस क्यों रहे हो? बोला बेटा हंस इसलिए रहा हूं कि तुम वापस नहीं आओगे, मुझे यहां छोड़ के जा रहे हो, इसलिए मुझे हंसी आ रही कि तुम कह रहे हो कि मैं कुछ लेने जा रहा हूं और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, ये धोखा दे रहे हो, इसलिए मुझे हंसी आ रही। बोला फिर बाबा रो क्यों रहे हो? बोला रो इसलिए रहा हूं कि मेरे बाप को भी मैं यहां छोड़ के गया था कि मैंने किया था, अब मेरे को भोगना पड़ रहा है। लड़के ने कहा अरे राम राम, इसका मतलब मेरा बेटा भी मेरे को यही छोड़ के जाएगा। उस बाबा को वापस लाया, पत्नी को कहा जब तक घर में है इसकी सेवा कर लो, नहीं तो तुमको और हमको भी कोई जंगल में छोड़ के आएगा। इसलिए बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, बड़ों का अपमान करने वाला, जो बड़ों का सम्मान करता है उसका यश बढ़ता है, उसका बल बढ़ता है, उसकी विद्या बढ़ती है, उसकी कीर्ति बढ़ती है। जो बड़ों का सम्मान नहीं करता है वो संसार में बहुत दुखी होता है। जो आशीर्वाद माता पिता के चरणों में आप नमस्कार करते हो और जब कहते हैं सुखी रहो, वो एक ऐसी आशीर्वाद है जो आपको बहुत मुश्किल से बचा देगी, वो सुरक्षा का कवच है। इसलिए बड़ों की सम्मान करना सीखो, बड़ों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी एक दिन बूढ़े होंगे, जो हम अपमान करेंगे तो हमारा भी ऐसे ही होगा, तो ये सोचना चाहिए। तो बात कर रहे थे कपिल देव अपनी मां को ऐसे उपदेश दिया, और फिर देवहूति भी बहुत समझ गई जब सब चीजों को, तब कहा आदमी कितना नीच क्यों न हो, पापी क्यों न हो, लेकिन भक्तों का संग मिल जाए तो भगवान की सेवा करना बहुत आसान है। और अगर कोई भगवान का नाम एक बार भी उच्चारण कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो समझ लेना चाहिए कि इसने पहले सब तप कर लिए, सब यज्ञ कर लिए, सब तीर्थ कर लिए, इसने सब पहले जन्मों में सेवा की है तब आज इसके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, नहीं तो भगवान का नाम मुख से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब कर्दम मुनि ने कहा, अब कपिल देव ने कहा, मां अब मुझे आज्ञा दीजिए। और कपिल देव वहां से उत्तर दिशा में जहां गंगा समुद्र से मिलती है, गंगा सागर कहते हैं उधर, वहां कपिल देव चले गए। आज भी कपिल देव गंगा सागर में रह रहे हैं, उधर कपिल देव का आश्रम आज भी है। और गंगा कैसे धरती के ऊपर आई ये नवे स्कंद में कथा आएगी, भगवान ने चाहा और समय मिला तो बात करेंगे। कपिल के आश्रम में घोड़ा बांध के चला गया था और वहां सगर महाराज के बेटे गए थे जो भस्म हो गए थे, उनके उद्धार के लिए गंगा धरती के ऊपर आई। तो कपिल का आश्रम आज भी गंगा सागर में है, हम देख के आए हैं उस स्थान को जहां गंगा सागर में मिलती है। यहां तीसरा स्कंद पूरा होता है। चौथा स्कंद विसर्ग है, ब्रह्मा जी की सृष्टि। चौथे स्कंद में पहले 7 अध्यायों में धर्म का उद्देश्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता है। इस प्रसंग में शंकर और सती, भगवान शंकर और सती और दक्ष के यज्ञ का वर्णन है। 5 अध्यायों में ध्रुव महाराज भगवान की प्राप्ति करते हैं, दर्शन करते हैं, अर्थ के लिए जाते राज हैं लेकिन जाते भगवान के पास मांगने हैं, अर्थार्थी भक्त उसका दर्शन है। 11 अध्यायों में ध्रुव वंश के महाराज पृथु का दर्शन है और 8 अध्यायों में इसी ध्रुव वंश में महाराज प्राचीन बरहित और 10 प्रचेताओं का वर्णन है। तो ये चौथा स्कंद, आज समय कितना हो गया, क्या समय हुआ, 9, तो अभी समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक घंटा तो हो गया है, 10 और मिनट बात करें। तो चौथा स्कंद शुरू होता है, ये जो कन्याएं हैं ना मनु की, देवभूति का तो वर्णन हो गया, उसकी 9 कन्याएं हुई, उसमें से एक कन्या का विवाह, एक कन्या का नाम था अनुसूया, बाकी की सब कन्याओं के नाम बहुत सुंदर हैं, वो कौन कौन ऋषि से शादी हुई है ये तो ब्रह्मा जी बोल के गए थे। अनुसूया की शादी हुई अत्रि ऋषि से और रामायण में इन दोनों का नाम आता है चित्रकूट में, जहां सीता राम और लक्ष्मण तीनों अनुसूया और अत्रि के आश्रम पे गए थे और सीता मां को मां अनुसूया ने नारी धर्म का उपदेश दिया था। तो अनुसूया उसको कहते हैं जो किसी से द्वेष न करे, किसी में बुराई न देखे, उसको अनुसूया बोलते हैं। और पतिव्रत नारियों में अनुसूया का नाम पहले नंबर पे आता है। अत्रि उसको कहते हैं जो तीनों गुणों से ऊपर हो, प्रकृति के रजो सतो तमो गुण से ऊपर हो, शुद्ध सतो गुण में जो हो उसको अत्रि बोलते हैं। कोई गुणों से ऊपर हो और किसी में दोष न देखे, उसके घर में भगवान बिन बुलाए अपने आप चले आते हैं। राम जी अपने आप चले गए थे अत्रि ऋषि के आश्रम में। तो अत्रि तपस्या कर रहा था, तपस्या में कह रहे थे हे जगदीश्वर कृपा करो। जैसे तपस्या से भगवान राजी हुए, गरुड़ के ऊपर चढ़ के विष्णु आ गए, हंस के ऊपर चढ़ के ब्रह्मा जी आ गए और नंदी के ऊपर चढ़ के भगवान शंकर आ गए और देवता साथ आए। अत्रि बोलते हैं मैं तो एक भगवान की प्रार्थना कर रहा था, इतने सारे सब कैसे आ गए। इसका मतलब अत्रि कौन भगवान है ये समझने में सक्षम नहीं था। और भगवान विष्णु ने कहा आपने जगदीश्वर कहा, ये जगत के हम तीनों ईश्वर हैं, ये सतोगुण को मैं देखता हूं और रजोगुण को ब्रह्मा जी देखते हैं, उत्पत्ति ब्रह्मा जी करते हैं, पालन मैं करता हूं और संहार ये शंकर जी करते हैं। तब अत्रि कहते हैं आप तीनों मेरे पुत्र बन जाओ अगर मेरे से संतुष्ट हो तो। भगवान तीनों ने हां कर दी, अनुसूया और अत्रि को ब्रह्मा जी से चंद्रमा पुत्र हुआ। अत्रि और अनुसूय का पुत्र है चंद्रमा, और ये उत्पन्न हुआ ब्रह्मा के अंश से, ये ब्रह्मा का अवतार। रुद्र के अवतार से हुआ दुर्वासा ऋषि, और भगवान विष्णु के अंश से हुआ दत्तात्रेय भगवान, दत्त भगवान दत्तात्रेय कहते हैं। तो ये तीन भगवान, तीन देवता अनुसूया और अत्रि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। फिर आगे कथा करते कहते हैं कैसे आकुटी जो थी उसका विवाह प्रजापति रुचि से हुआ। देवहूति के बाद दूसरी बेटी आकुटी, किसकी? मनु की और शत्रुपा की। आकुटी का विवाह प्रजापति रुचि से हुआ और उनका बेटा भगवान यज्ञ हुआ, उनका बेटा हुआ यज्ञ जो भगवान का अवतार है, और बेटी हुई दक्षिणा जो यज्ञ में देते हैं, इसका नाम आगे आएगा तब आपको बताएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा जो बेटा होगा इस आकुति का उसको मैं गोद में, मनु ने कहा, मनु नाना हुआ ना उसका, मनु ने कहा इसका बेटा मैं अडॉप्ट करूंगा। फिर तीसरी प्रसूति की बात आई, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, और दक्ष की बहुत बहुत कन्याओं में उनके वंश का वर्णन करते हुए फिर कहते हैं दक्ष की जो सबसे छोटी कन्या थी ना सती, उसका कोई संतान नहीं था। अब विदुर पूछता है मैत्रेय जी से, सती को संतान क्यों नहीं था? बाकी तो धर्म को कन्याएं दे दी उसने दक्ष ने अपनी विवाह करके, और धर्म को जो कन्याएं दी उनमें से एक का नाम मूर्ति था, मूर्ति और धर्म से नर नारायण भगवान का अवतार हुआ। नर नारायण भगवान जो बद्रीकनाथ में हैं वो धर्म और मूर्ति के बेटे हैं। आज भी मां मूर्ति का मंदिर वहां है, साल में एक बार उद्धव जी नर नारायण की ओर से मां मूर्ति के दर्शन को जाता है, मूर्ति का मंदिर वहां बना हुआ है। सती को संतान क्यों नहीं हुआ? तब ये कथा शुरू होती है। एक बार हरिद्वार में गंगा के तट पे कनखल के ऊपर बड़ा यज्ञ हो रहा था, और यज्ञ के अंदर ब्रह्मा जी आए थे, शंकर जी बैठे हुए थे, बहुत सारे देवता थे, प्रजापति बैठे थे। दक्ष प्रजापति यज्ञ मंडल में आया, सब उठ के खड़े हो गए क्योंकि दक्ष बहुत बड़ा प्रजापति था, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए क्योंकि ब्रह्मा जी का बेटा था, और शंकर तो ब्रह्मा जी के लिए भी पूजने हैं, वो भी बैठे रहे। दक्ष ने ऐसे आते देखा, ब्रह्मा जी नहीं उठे कोई बात नहीं, मेरे पिता है, लेकिन ये शंकर क्यों नहीं उठा? ये तो मेरा जामाता है ना, मेरी बेटी का पत्नी है, पति है ना, मैं इसको कब लड़की देने वाला था? ब्रह्मा जी ने कहा तब मैंने अपनी लड़की इसको दे दी। अरे घर भी नहीं है, भूतों के साथ रहता है, सारा दिन बभूत लगाता है, कभी पवित्र भी नहीं होता है, और मैं आया हूं इसके पिता के समान, उठ के खड़ा नहीं हो सकता है? देवताओं इसके लिए यज्ञ में कोई भाग नहीं देने की जरूरत है। शंकर जी शांत, कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा रहे थे। लेकिन शंकर के गण नंदी आंधी, जो नंदी था और गण थे, उन्होंने कहा बकरी की तरह बह बह करके इतना सारा चिल्ला क्यों रहा है, जाओ बकरी बन जाओ, बह 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 करता है, बायकाट करके असेंबली का दक्ष चला गया। ब्रह्मा जी के बैठे हुए सब देवताओं के बीच दक्ष चला गया, यहां शंकर जी उठ के चले गए कैलाश में। शंकर जी ने जाके अपनी पत्नी सती दक्ष की बेटी को यह नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी ने मेरा अपमान किया है, ये शंकर जी की बुद्धिमानी है। ये आदमी जो पीछे बैठे हो ना, वो एक बात याद कर लो, शंकर जी की ये शिक्षा है, कभी ससुराल वालों में सास ससुर या साले से झगड़ा हो जाए ना, तो घर में आके पत्नी को मत बताना, पत्नी का मन उनकी तरफ होगा, आपकी तरफ नहीं होगा। अपने पिता की मां की या भाई की बुराई नहीं सह सकती, ये शंकर जी की शिक्षा है, ये पुरुषों के लिए। कभी भी पत्नी के पिता माता या भाई की बुराई नहीं करनी चाहिए पत्नी के सामने। घर ठीक चल रहा था शंकर जी का, शंकर जी की गृहस्थी भी अद्भुत है। ऐसी गृहस्थी, शंकर जी को ग्रस्त को कितना कष्ट होता है, कैसे रहना चाहिए, ये जरा देख लो एक नजर। शंकर जी का वाहन क्या है? बैल। हा? और पत्नी कौन है? दुर्गा माँ का वाहन क्या है? तो घर में पार्किंग कैसे करने? शेर खाएगा बैल को कि नहीं खाएगा? हाँ, गणेश बाबा किसके ऊपर चढ़ के आएगा? चूहे के ऊपर। और गले में क्या है बाबा के? शंकर के। खाएगा चूहे को कि नहीं खाएगा? और दूसरा बेटा आएगा जो कार्तिक के, वो किसके ऊपर चढ़ के आएगा? मोर के ऊपर। और ये सांप बाबा के गले में, उसको मोर खाएगा। अब इतने सारे घर में एक दूसरे के दुश्मन है, फिर भी शंकर समाधि में बैठा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है घर में झगड़े होते रहेंगे, फिर भी भगवान का ध्यान करोगे तो सुखी रहोगे। और शंकर जी ने जैसे विष भी पी लिया कि इतनी परेशानी, तो रोज का विष पीना है घर के अंदर, कभी किसी का झगड़ा होगा, कभी किसी का होगा, लेकिन फिर भी बाबा मस्त होता है। ये बाबा का परिवार ऐसा है, शंकर जी का, सब एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन फिर भी शांत है। एक दिन बैठी हुई सती कैलाश में ऊपर से देखती है, विमान में देवता जा रहे हैं, उनकी पत्नियां सज धज के जा रही है। सती कहती है, कहां जा रहे हैं? दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा है, हम सब वहां जा रहे हैं। मेरा पिता यज्ञ कर रहा है? शंकर जी को जाकर कहती है, पति देव भोलेनाथ, मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, ये सब देवता देखो जा रहे हैं, मेरी बहनें आएंगी, मेरी माता का दर्शन करो, आप चलो ना, चलें। शंकर जी ने कहा, हमें तो निमंत्रण नहीं आया है, इन्विटेशन नहीं आया। सती कहती है, अपने घर में, पिता के घर में, मंदिर में, गुरु के घर में इन्विटेशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मंदिर में जाने के लिए इन्विटेशन नहीं हो तो भी जा सकते हैं, गुरु के घर में जा सकते हैं, पति के घर में, पिता के घर में कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है। शंकर जी बोला, कोई भूल जाए तो और बात है, लेकिन जानबूझ के कोई नहीं दे तो वहां जाने से अपमान होगा। सती कहती है, नहीं, मेरा मन, मेरा पिताजी के घर जाने का बहुत है। शंकर जी ने कहा, आप जाओगी, आपका अपमान होगा, और अपमान मृत्यु से ज्यादा भारी होता है, और मेरी मानो तो मत जाओ। सती बाहर आके आगे पीछे घूमने लगी और बहुत क्रोध से शंकर की ओर भी देखने लगी, जैसे भस्म कर देगी। पिताजी के घर जाने से किसी ने रोक दिया तो बहुत क्रोध आता है, लड़की को माता पिता के घर जाने से रोकने से बहुत क्रोध आता है, कोई भी रोकेगा गुस्सा उसको जरूर आएगा। शंकर जी ने देखा, अब ये यहां रहेगी तो भी मरेगी उनकी याद करती करती, और वहां जाएगी तो भी मरेगी मेरी याद करती करती। अब इसको मरना ही है तो उधर अपने बाप के घर जाके मरे, मेरे घर में क्यों मरे? सती ने फैसला किया, मैं जाऊंगी। उठाई अपनी वीणा, अपने गाने का सामान, श्रृंगार का सामान, यज्ञ में जा रही है। नंदी और आदि गण सती के साथ चल दिए। शंकर जी अपनी मौज में बैठे, सती वहां पहुंची, पिताजी ने स्वागत नहीं किया, यज्ञ में बैठे हुए किसी ने स्वागत नहीं कहा, केवल मां ने कहा, बेटी आओ, किसी बहन ने कहा, आइए बहन। सती ने एक नजर ऐसी यज्ञ के ऊपर डाली, स्त्री को बहुत देखने में बड़ी चतुर होती है, एकदम सामने वाले के मन में क्या है ये स्त्री को एक मिनट में पता लग जाता है। सती बोलता, शंकर जी के लिए स्थान नहीं है यहां यज्ञ के अंदर? सब सुने, उसके बीच में पिताजी को कहती है, दक्ष, शंकर जिसकी चरणों की रज के लिए ब्रह्मा आदि देवता दौड़ते हैं, उसका तुमने अपमान किया, उसके लिए यहां जगह नहीं रखी है, उसकी यज्ञ में तुम्हारे में कोई भाग नहीं रखा है, मेरा ये शरीर तुमसे उत्पन्न हुआ है दक्ष, और मैं वापस जाऊंगी, जब शंकर मुझे दक्षिणाएं नहीं कहेगा तब मुझे बहुत शर्म आएगी, इसलिए मैं ये तेरा शरीर नहीं रखना चाहती हूं। और सती ने एकदम अपनी योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया, शरीर का, सती का शरीर टूटा, और वहां जो गण आए थे उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करना शुरू कर दिया। इधर यज्ञ का सामान, ब्राह्मणों ने यज्ञ में आहुति डाली और ऋभु देवता निकले और उन्होंने गणों को भगा दिया। सती का तो यहां शरीर छूट गया, नारद जी घूमते हुए कैलाश में, वाह भोलेनाथ बाबा प्रणाम, कैसे सब कुशल मंगल है? हाँ ठीक है। दक्ष यज्ञ का कोई समाचार? बोला नहीं। बोला सती ने प्राण त्याग दिए। नारद जी को तो इतना ही कहना था, सती ने प्राण त्याग दिए। भोलेनाथ एक बाल को ऐसे खींच के जमीन के ऊपर मारा और धरती के अंदर से उस बाल से एक लाल लाल बाल, बड़ी बड़ी आंखें, वीरभद्र उत्पन्न हुआ। वीरभद्र कहता है क्या आ गया है शंकर जी? बोला जाओ यार, जाके यज्ञ का समाचार लाओ, सती ने वहां क्यों शरीर छोड़ा है, जरा उनको शिक्षा दे दो। अब वीरभद्र और गणों के साथ चला। जब वीरभद्र चला, आंधी की तरह तूफान जैसे आ रहा है, वो भृगुवंशी ब्राह्मण जो स्वाहा कर रहे थे, बोला अभी शाम तो नहीं हुआ, अंधारा कैसे हुआ है, अंधेरा हो रहा है, आंधी कहां से आ रही है? प्रसूति बोलती है सती ने शरीर छोड़ दिया है यहां, अब तो शंकर जी का क्रोध आपको झेलना पड़ेगा। तब तक वीरभद्र आया और आते ही वीरभद्र ने पहले दक्ष को ऐसे पकड़ा, पकड़ के दर्शन दक्ष की गर्दन को काटने का प्रयास किया, नहीं कटा। तो एक लकड़ी की छुरी है जो बकरे को जब यज्ञ में डालते हैं, उस छुरी से ऐसे काट के गर्दन, ऐसे दक्ष का गर्दन हाथ में उठा के, जो दक्षिण अग्नि थी स्वाहा, दक्ष का, दक्ष के बाद देखा ये भृगु, ये दाढ़ी ऐसे हिला रहा था ना, ऐसे उखाड़ के दाढ़ी भृगु की फेंकी नीचे, और फिर वो पुष्प की आंखें निकाली और भग के दांत तोड़ दिए, किसी देवता का हाथ तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा। अब सारे अर्थोपेड में किसी का हाथ बंधा, किसी की आंख बंधी हुई है, सारे अस्पताल में जैसे हो, सब जाए ब्रह्मा जी के पास, गए ब्रह्मा जी हमारा हाल देखो, हम तो हमारा तो ऐसा बुरा हाल कर दिया। ब्रह्मा जी ने बोला शंकर का अपमान किया है, एक वैष्णव का अपना अपमान किया है, यज्ञ के अंदर उसका भाग नहीं दिया है, तो ऐसा ही तो हाल होगा आपका। अब चलो शंकर जी को राजी करना है। ब्रह्मा जी देवताओं को लेके गए कैलाश में, देखा शंकर जी क्रोध में नहीं है, चार कुमार बैठे हैं, नारद आदि बैठा है और ज्ञान की चर्चा कर रहा है, इस मुद्रा में बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, शंकर जी ये देवता बड़े दुखी हो गए हैं, इनसे गलती हो गई, आपका अपमान हो गया, लेकिन अब कृपा करके दक्ष को मैंने प्रजापति करके उत्पन्न किया था, उसको प्रजा बनानी है, आप उसको यज्ञ को ठीक करो। शंकर जी ने बोला चलो, ये साधु के लक्षण है, कोई क्रोध उस वक्त आया तो आया, बाद में दिल में कुछ बुराई नहीं रखी। शंकर जी साधुओं की ये शिक्षा देते हैं कि ठीक है क्रोध जिंदगी में आता है, लेकिन उसको पकड़ के दिल में नहीं रखना, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी पत्नी वहां मर गई है, ऐसा कोई बाबा ने कुछ नहीं कहा। शंकर जी इस दुनिया में सब लोग दुखी इसलिए हैं, वो तीन साल पहले सास ने कुछ कह दिया था, अभी तक यहां बांध गया, उस दिन आपने मुझे कहा था इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ये मर गए, तीन साल गुजर गए, अब झंझट खत्म करो, उसकी पत्नी मर गई है तब भी चला जा रहा है वो, और तुम्हारा कुछ किसी ने कह दिया तो अभी तक झगड़ा तुम्हारा चल रहा है। दुनिया वाले लोग पुरानी बातों को याद करके दुखी रहते। शंकर जी वहां आ गए, ब्रह्मा जी ने कहा आप कृपा करो दक्ष को जीवित करो। बोले दक्ष को जीवित करो, इसका इसका सर तो पहले से दक्षिण अग्नि में चला गया, स्वाहा हो गया, आप कहां चलाऊ? बकरे का सर डालना था वहां, बकरे का बचा हुआ है, आप बोलो तो मैं लगा दूं। अब कैसे भी जीवित तो करो। शंकर जी ने बकरे का सर उठाया, पहले से भी उनको हेड ट्रांसप्लांटेशन ऑपरेशन उन्होंने पहले तो गणेश के ऊपर हाथी का लगाया था, वो तो बड़ा इतना था, बकरे का नजर के उठ के दक्ष शंकर जी के चरणों में प्रणाम करते बोला मैं हमसे गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए, प्रणाम किया। तब कहा भृगु जी की दाढ़ी बनाए, ये बकरे के बचे हुए थोड़े बाल यहां लटका दो, चपक जाएंगे। बोला इस पूछा की आंख, बोला सूरज की रोशनी में देखेगा भले इसकी आंख बंद रहे। बोला भग के दांत, बोला ये यजमान के दांतों से खाएगा, नहीं तो चने का आटा है, इसको उनको शायद पता होगा मॉरिशस में ये जो दाल पुई खाता रहेगा, भग का यही प्रसाद होगा। अब सबके हाथ वात ठीक हो गए, इतनी देर में भगवान विष्णु प्रकट हुए। जैसे ही शंकर का अपमान की गलती मान ली दक्ष ने, भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने प्रकट हो सबने दर्शन किया, शंकर जी ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सब देवताओं ने प्रणाम किया। तब कहा भृगु आदि ऋषियों को यज्ञ संपन्न करो। बोला भगवान आप आए यज्ञपति है तो यज्ञ संपन्न ही हो गया, अभी अभी यज्ञ में क्या रह गया बाकी। तो तीन देवता एक वक्त पे प्रकट हुए। कनखल में अभी भी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही जगह पे आए थे, लेकिन यज्ञपति जब तक विष्णु प्रसन्न कब होता है, अगर यज्ञ करो, धर्म का काम करो और किसी का अपराध करो, वैष्णव का, शंकर जैसे मान का, तो यज्ञ का कभी फल नहीं मिलता है। लेकिन भगवान विष्णु के आने से यज्ञ संपन्न हुआ। यहाँ सात अध्याय पूरे होते हैं, कल ध्रुव महाराज के चरित्र से आगे की कथा शुरू करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा।